Om Shanti. 18th June 1977. रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदान भूमि पर आए हो। रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है या वाणी द्वारा? वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है या वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है? वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनाती है, वह वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। बेहद की सेवा वाणी से परे स्थिति द्वारा होती है या वाणी से होती है? अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्व शक्तिवान मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है, ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है या वाणी में आने से होती है? सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी सर्वपति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे स्थिति की है या वाणी में आने की है? दोनों के अनुभवी दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो, दोनों में से ज्यादा समय किस में स्थित हो सकते हो? कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है? ऐसे एवर रेडी हो जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले उस समय स्वयं को स्थित करा सको, वह स्थित होने में ही समय निकल जाएगा, क्योंकि जैसे समय संपन्न होने का समीप आ रहा है तो समय के पहले स्वयं में यह विशेषता अनुभव करते हो। अंतिम समय फुल स्टॉप पूर्ण विराम होने सर्वश्रेष्ठ साधन यही है। जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण उसी घड़ी उसी स्थिति में स्थित हो जाना, यह इस साधन से के प्रैक्टिस को अनुभव में ला सकते हो। प्रैक्टिस है, बाप दादा ने अभ्यास तो बहुत समय से सिखाया है और सिखा रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास में स्वयं को संपन्न कितने समझते हो? अभी इस वर्ष के अंत तक स्वयं को ऐसे एवरेडी बना सकोगे? तैयार हो? वह समय को देखते स्वयं का अभ्यास करने में और ही अलबेले हो गए हो। नाम रूप कब विनाश होगा इस बात को सोचते हुए पुरुषार्थ में संपन्न होने के बजाय व्यर्थ चिंतन व व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद हो गए हो। अव्यक्त मुरली 18th June 1977। कितने सारे प्रश्न पूछे हैं बाबा ने, सबका क्या उत्तर है? सब प्रश्नों का उत्तर क्या है? रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदानी भूमि पर आए हो। रूहानी मिलन वाणी से परे की स्थिति में होता है या वाणी द्वारा? वाणी से परे की स्थिति प्रिय लगती है या वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है? तीसरा प्रश्न है, वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है या सर्व की सेवा के निमित्त और सेवा के निमित्त बनाती है, वह वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। अगला प्रश्न है, बेहद की सेवा वाणी से परे स्थिति द्वारा होती है या वाणी से होती है? तुरंत उत्तर नहीं दो। अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है, ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है वह वाणी में आने से होती है। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे की स्थिति है वह वाणी में आने की स्थिति है। क्या उत्तर है सब प्रश्नों का? क्या आंसर है? दोनों के अनुभवी दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो, दोनों में से ज्यादा समय किस स्थिति में स्थित रह सकते हो? कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है? ऐसे एवर रेडी हो जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले उसी समय स्वयं को स्थित करा सको, वह स्थित होने में ही समय निकल जाएगा। तो सभी प्रश्नों का उत्तर क्या है? इतने जल्दी उत्तर नहीं देना है। किसी ने पूछा तुम कौन है को, तो तुरंत उत्तर यदि दे दिया कि मैं आत्मा हूं तो रिसर्च कम है। योग में एक है तुरंत स्थित हो जाना मैं आत्मा हूं और योग चालू। एक है थोड़ी देर खोजना मैं हूं कौन, मैं क्या हूं। बाबा जो प्रश्न पूछते हैं उसके भी उत्तर तुरंत यदि दे दिया तो खोज वहीं खत्म हो गई, रिसर्च वहीं स्टॉप हो गया, चिंतन वहीं समाप्त हो गया। किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं देना है, खोज करनी है उसकी कि वो क्यों पूछ रहा है, क्या उसको। ये सारे प्रश्न जो है वो अध्यात्म के गहरे से गहरे प्रश्न है। ये वो प्रश्न नहीं है कि जिनका उत्तर मिलने से ही संतुष्ट हो जाए, संतुष्टि आ जाए। ये वो अनुभव वाले उत्तर है सारे इनसे। तो यहां बाबा वाणी से परे की स्थिति की महिमा कर रहा है। एक तरफ है वाणी, एक तरफ है वाणी से परे। कौन सी स्थिति अधिक शक्तिशाली है? विवेक कहता है वाणी शक्तिशाली है, क्योंकि वाणी से परे की स्थिति का मनुष्य को अनुभव कम है। उससे जो बातें कही जा रही है उसका भी अनुभव बहुत कम है, ज्यादा अनुभव वाणी का है। इसके लिए पहला उत्तर है वाणी। पहले में साइंस में कभी भी हाइपोथेसिस किया जाता है, ए इक्वल टू बी प्रूव करना है, तो पहले ये माना जाता है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर सीधा ही मान ले हाँ ए इज इक्वल टू बी तो खत्म, चिंतन ही खत्म, मनन चिंतन कैसे होगा। पहले तो ये समझा जाए कि नहीं, वाणी ही शक्तिशाली है। ये सारी जो सेवाएं बताई है ये सब वाणी से होती है, वो जो भी है। तो जब ऐसा चिंतन करेंगे तो फिर धीरे 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 पता चलेगा कि नहीं, वाणी की कहां लिमिटेशन है। तुरंत ही मान लिया तो गए, फिर वहां पूरा हो जाता है सब कुछ। तो रूहानी मिलन वाणी से परे की स्थिति में होता है या वाणी द्वारा होता है? तो हमारा उत्तर पहले है वाणी द्वारा होता है। रूहानी मिलन के लिए वाणी बहुत जरूरी है, ये उत्तर है हमारा। वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है या वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है? कौन सी लगती है? वाणी की, क्योंकि हम इसी में रहते हैं। किसलिए हमें प्रिय कौन सी स्थिति है? यदि वाणी से परे स्थिति होती तो हम बोलने की इच्छा ही नहीं होती है, परंतु हमें तो बोलने की इच्छा बहुत है, अभ्यास भी है, इच्छा भी है, चाहते हुए भी बोलते हैं। इसका अर्थ वाणी की स्थिति प्रिय है। तीसरा प्रश्न, वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है या और सर्व की सेवा के निमित्त बनाती है, या वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है? तो उत्तर है वाणी से। उत्तर क्या है कि वाणी से हम ज्यादा शक्तिशाली सेवा कर सकते हैं। कोई आया, हम उसको बहुत पावरफुल समझा दिए तो लगता है ना आज पावरफुल सेवा कर दी। तो उत्तर है वाणी। बेहद की सेवा वाणी से परे की स्थिति द्वारा होती है या वाणी से होती है? वाणी से होती है, क्योंकि हम वाणी से हजारों लोगों को संदेश दे सकते हैं। चुप रहेंगे तो कैसे संदेश जाएगा? अगला प्रश्न है, अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है, तो वाणी से होती है। ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है या वाणी में आने से होती है? तो उत्तर क्या है? वाणी से होती है। कौन सी स्थिति? मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर नॉलेजफुल प्रैक्टिकल। अगला प्रश्न है, सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे की स्थिति है या वाणी में आने की स्थिति है? तो उत्तर है वाणी से। वाणी से क्या बनते हैं? हम विश्व कल्याणकारी, क्योंकि सबको संदेश देंगे। महादानी, क्योंकि दान कैसे करेंगे, मौन से थोड़ी ना करेंगे। वरदानी, सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति, जो इच्छा है वो पूर्ण की बोलकर। तो दोनों के अनुभवी, दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो, दोनों में से ज्यादा समय किस में स्थित हो सकते हो? अब ये प्रश्न है बाबा का, एक एक प्रश्न कितना गहरा है। दोनों में से कौन सा समय, ज्यादा समय किस में स्थित रह सकते हो, वाणी में या मौन में? ज्यादा वाणी में जाओ तो मौन खींचता है, ज्यादा मौन में जाओ तो वाणी खींचती है। पेंडुलम जो होता है ना ऐसे ऐसे घूमता है। जब वो राइट की तरफ जा रहा है तो ये मत समझना वो राइट की तरफ जा रहा है, वो तैयारी कर रहा है किसकी, लेफ्ट की तरफ जाने की। जब बहुत ब्रह्मचर्य में जाता है तो अब्रह्मचर्य खींचता है, जब व्यक्ति अब्रह्मचर्य में जाता है तो ब्रह्मचर्य खींचता है। ज्यादा काम की तरफ जाता है तो उसको ब्रह्मचर्य की याद आती है, फिर पेंडुलम घूमते रहता है ऐसे ऐसे, बीच में बहुत कम रहता है। किसी के प्रति बहुत ज्यादा निगेटिव सोचो तो फिर धीरे धीरे उसके गुण दिखाई देने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। किसी के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचो तो सोचते कहीं भ्रम में तो नहीं जा रहा हूं, इसमें तो ये सब भी तो है। मनुष्य का मन ऐसे पेंडुलम की तरह घूमता है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। साक्षी अर्थात बीच में रोक देना उसको, न उधर न इधर, ये साधना है। तो यहां सारे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न है, वाणी से क्या होता है और वाणी से परे क्या होता है। हमको स्वयं एक एक जो प्रश्न कहो या जो बातें कहो खुद ही रिसर्च करना है इसके ऊपर, क्या वास्तव में ऐसा है। यदि हम केवल मान ले कि हाँ नहीं वाणी से परे वाली स्थिति से ज्यादा सेवा होती है, पर हमको पर्सनल क्या अनुभव है उसका, व्यक्तिगत अनुभव क्या है, क्या वाणी से परे की स्थिति में हम रहते हैं तब मन प्रश्नों से परे रहता है, या फिर वो झूठी एक क्या कहेंगे उसको आत्मवंचना, आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन तो नहीं है। क्योंकि हमको बताया गया है इसलिए तुरंत नहीं मान लेना है सारा जो लिखा गया है, बताया गया चाहे किसी ने भी बताया, तुरंत मान लेना अर्थात स्टॉप, चिंतन ही खत्म, संदेह हो, संशय नहीं संदेह। क्यों ऐसा, क्यों वैसा, क्यों ये किस लिए कहा, ये क्यों कहा, ये सारे वहां पर मन ही मन प्रश्न हो तो कहीं हम इनकी वाक्यों की गहराई में जा सकते हैं। नहीं तो वैसे के वैसे तुरंत स्वीकार कर लिया तो ये अंधश्रद्धा हो गई। बाबा ने कहा ये अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है, जज करो मैं जो कहता हूं वो राइट है या शास्त्र में जो लिखा है वो राइट है। तो एक स्थिति है वाणी की, एक स्थिति है वाणी से परे की। शक्तिशाली कौन सी स्थिति है, अनुभव तो कहता है वाणी में जो है उसमें हमको शक्तिशाली लगता है, क्योंकि वाणी से परे जाने की जो स्थिति है उसका बहुत कम अनुभव है। मौन का अनुभव कितना है, बहुत कम, बहुत कम। हाँ कभी कभी मौन की झलक मिल गई थोड़ी सी तब अनुभव हुआ कि शक्तिशाली है, परंतु कितना शक्तिशाली है वो नहीं पता। और क्योंकि किताबों में लिखा है, भगवान ने कहा है, तो उत्तर रेडीमेड है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, सबसे बड़ी वही सेवा है। परंतु अनुभव क्या है, महात्मा बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, मौलिक पुत्त नाम का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, मौलिक पुत्त, वो उनके पास एक बार आया और उसने पूछा क्या ईश्वर है। कंप्लीट बुद्धिज्म साइलेंस है, मेंटेन करता है भगवान के विषय में, कहीं पर भी है नहीं है इसकी कहीं चर्चा कोई नहीं है। बुद्धिज्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो मौन है भगवान के विषय में, कुछ भी नहीं कहा है भगवान है ना है कहाँ है क्या है वो सब छोड़ो। तो वो आकर पूछता है कि क्या ईश्वर है, तो महात्मा बुद्ध कहते मैं इसका उत्तर तो मैं दूंगा पर मेरी एक शर्त है। और तो वो कहता है कि शर्त कोई भी हो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, मैं क्षत्रिय हूं आप भी क्षत्रिय हो, जैसे आपने दृढ़ संकल्प से इस अवस्था को प्राप्त किया है मुझे भी कम मत समझना, मैं भी क्षत्रिय हूं जान की बाजी लगा दूंगा, जो कहोगे वो करूंगा। तो बुद्ध उससे कहते कि फिर से सोच लो, उत्तर तो मैं तुम्हें दूंगा, इधर आ जाइए अंदर, उत्तर मैं तुम्हें दूंगा परंतु मेरी एक शर्त है। वो कहता है जो भी शर्त होंगी मैं पूरी करने को तैयार हूं। तो वो बुद्ध से पूछता है कि क्या शर्त है बताओ। तो महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर शर्त ये है कि तुम्हें 2 साल मेरे पास रहना होगा मौन। जैसे ही 2 साल पूरे हो जाएंगे मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। वो थोड़ा सा घबरा जाता है। यदि लड़ाई करने को कहा होता तो तुरंत तैयार हो गया होता, आसान है। यदि मरने को कहा होता तो जहर लग गया होता, 2 क्षण में मृत्यु। यदि कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो कर दिया होता। तो अब क्या करे, वो तो जैसे फंस गया, क्योंकि उसको कहा कि 2 साल तुम मेरे पास रहो पर कुछ प्रश्न नहीं, कुछ पूछना नहीं, केवल चुप रहो बस। तो जब ये वार्तालाप चालू रहता है, एक दूर बूढ़ा सन्यासी बैठा रहता है, पुराना भिक्षु, तो वो जोर से चिल्लाता है और उस मौलिक पुत्र को कहता है कि हे साधक, इनकी बातों में मत आना, फंस जाओगे। मैं भी ऐसे ही आया था 30 साल पहले, और तब उन्होंने मुझे कहा था, यही प्रश्न लेकर आया था मैं कि भगवान है या नहीं है। इन्होंने कहा था 2 साल रुकना, आज 30 साल हो रहे हैं, जो पूछना है अभी पूछ लो, क्योंकि बाद में प्रश्न रहेंगे नहीं। तो वो भी सोचता है अब क्या करूं, पर महात्मा बुद्ध फिर कहते हैं सोच लो, 2 साल के बाद मैं उत्तर दूंगा। आपने वायदा किया था क्षत्रिय हो, नहीं तो जा सकते हो। तो वो फंस जाता है, पर उधर से वो भिक्षु ने भी वो कह दिया, तो कहता है ठीक है मैं तैयार हूं, और 2 साल वहीं रुक जाता है। प्रश्न बहुत सारे होते हैं उसके पास, क्रांतिकारी आक्रामक प्रश्न होते हैं। वो प्रश्न को लेकर ही आता है वो, कि उत्तर लेके जाऊंगा आज। तो 2 साल वहीं रुक जाता है। 2 साल के बाद तो महात्मा बुद्ध खुद उसे पुकार बुलाते हैं, तो कहते पूछो कोई प्रश्न है तो बताओ। वो कहता है वो बूढ़े भिक्षु ने सही कहा था, अब मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं रहा, यहां रहते रहते मौन में रहते रहते सारे प्रश्न खो गए हैं। चिंतन इतना गहरा हो गया है, मौन इतना गहरा हो गया है कि उस मौन की अवस्था में ही सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। प्रश्न सारे निरर्थक हो चुके हैं, क्या पूछूं अब, पूछने को कुछ रहा ही ना, तभी उत्तर आपने दे देना चाहिए था, अभी क्या पूछूं, जरूरत ही नहीं अब पूछने की। जैसे सारे सत्य स्वतः ही अवतरित हो गए हृदय में। तो मौन, तो बाबा का प्रश्न है वाणी और वाणी से परे, परंतु जितने पूछे हैं उनका अनुभव कितना है, मौन का अनुभव कितना है, वाणी का मौन, मन का और विचारों का, वो तो दूसरी बात है, परंतु उसकी शुरुआत भी होती है स्थूल मौन से, साइलेंस से। मौन का व्रत रखते हैं, भक्ति मार्ग में भी रखते हैं। जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, महावीर ने कितना साल रखा था, 12 साल, 12 साल तक मौन थे, कुछ भी नहीं बोला 12 साल तक, के बाद में भाषा भी भूल गए थे, क्या बोलना है और कैसे बोलना है, इतना गहरा वो मौन था। और अध्यात्म के मार्ग में केवल बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, उसमें जो है अध्यात्म कहीं खो जाता है। अध्यात्म की यात्रा मौन की यात्रा है, स्थूल भी और सूक्ष्म भी, और जितना स्थूल होगा फिर धीरे धीरे उससे सूक्ष्म भी आने लगेगा। परंतु मौन की परिभाषा क्या है, वो भी एक दूसरा प्रश्न है। केवल न बोलना, ये मौन है, वो भी है, परंतु मौन की गहरी परिभाषा है मौन अर्थात स्वचिंतन। कोई व्यक्ति मौन में है परंतु व्यर्थ की बातों में लगा हुआ है, मौन में ही इशारों से, तो उसे मौन नहीं कहेंगे। महाराष्ट्र में मेहर बाबा हुए हैं, 1925 में मौन धारण किया तो शरीर छोड़ने तक, शरीर उन्होंने छोड़ा 31 जनवरी 1969। ये डेट मुझे इसलिए याद रहती है क्योंकि ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी और उन्होंने 31 जनवरी 1969 इतने साल तक हर बार बीच बीच में उन्होंने घोषणा की कि अभी मैं मौन ये फला फला तारीख को तोड़ूंगा और जो भक्त है या फिर जो लोग हैं उनसे बात करूंगा, पर जैसे ही तारीख नजदीक आई इच्छा ही नहीं हुई, एक्सटेंड कर दी। उनका जो एक परम शिष्य था जिसने अभी अभी शरीर छोड़ा और जिसने सारा उनका लिखा, वो एक ही व्यक्ति ऐसा था जो बहुत छोटा था, 12-13 साल की उम्र में जो उनका शिष्य बन गया था या उनके साथ आ गया था, उनका सेवाधारी कहो, वो एक ही था जो जिनकी उनकी भाषा समझ सकता था, ईरानी ऐसा कुछ नाम था उसका, तो उसने बहुत सारी किताबें भी लिखी उनके ऊपर। तो उसने उसको वो बताते थे कि ये तारीख को मैं मौन तोड़ूंगा, पर तारीख नजदीक आई एक्सटेंड। कुछ तो होगा मौन में, कुछ तो ऐसा अमृत होगा, कुछ ऐसा नेक्टर होगा कि उसमें आत्मा जाते ही वाणी बहुत छोटे लगने लगती है, स्पीच। और बाबा की खुद की स्थिति देखो, कितना समय मौन रहता है, उसके वाक्य इतने पावरफुल क्यों है, क्यों है? क्योंकि मौन से निकल रहे हैं। कितना समय मौन रह रहा है? 5000 साल। कोई 5 साल यदि मौन रहे और भाषण दे बाद में तो बहुत पावरफुल होगा। 5 साल, ये कितना दिन के बाद बोल रहा है? हम बोलने की बात कर रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं, ठीक है, परंतु मौन। संकल्प भले चले परंतु वाणी जो है उसमें एनर्जी तो जाती है, चाहे कोई कैसा भी बोले, एनर्जी तो उसमें जाती है। हमारे अपने खुद का ही सबका अनुभव होगा कि जिस दिन हम चुपचाप रहे सुबह से लेकर शाम तक, कुछ भी नहीं बोले, शाम को कितनी पावरफुल स्टेज हो जाती है शाम तक ही। और वो ऐसा भी नहीं केवल बैच लगा लिया और उसमें लिखा है, बहुत मौन कोई प्रदर्शन नहीं है जिसमें बैच और वो लिखा रहे, दूसरे डिस्टर्ब ना करे, पर वो फिर भी तो करते हैं, दूसरों तो करेंगे, जो उनका स्वभाव वो ही करेंगे, चाहे लगाओ या ना लगाओ, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है।
लगाओ तो ज्यादा कर
लो। ये भी हो सकता है। इसके लिए मौन कोई उस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं है, इट्स नॉट एग्जीबिशन कि जो उसको दिखाए, वो तो आंतरिक है, स्वतः है, जिसमें आत्मा ऐसा भी नहीं कि बोले ही नहीं। जैसे कहा, सिल्वर जो है वो है स्पीच, मौन जो है वो साइलेंस, डायमंड भी है कंट्रोल्ड स्पीच, कम नहीं, कंट्रोल्ड स्पीच इज डायमंड, वो मौन से भी ऊपर है, जिसमें व्यक्ति ये भी नहीं दिखा रहा है कि क्योंकि मौन अगर है और उसको कोई बोलने को कहे तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, तुमने मेरा मौन तोड़ दिया। पहले तो व्यक्ति वस्तु और परिस्थितियों पर दोष कि इन्हों की वजह से मेरा मौन टूटा है, जो वास्तविक मौन है वो कभी टूटता ही नहीं है, उसमें बोल भी बीच में आ रहे परंतु वो बोल भी कंट्रोल स्पीच है, वो तो उससे भी ऊपर के है, डायमंड है, वो संयमित बोल है, जहां आवश्यक है वहां बोल रहा है व्यक्ति। आई शैल स्पीक टू दी इन साइलेंस से शेक्सपियर का एक पात्र है जो कहता है कि मैं तुमसे बोलूंगा परंतु मौन में बोलूंगा, आई शैल स्पीक टू दी इन साइलेंस, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशय। गुरु बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहा है, हजारों शिष्य है, कोई प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है, व्याख्यान चालू है, कौन सा? मौन का। न वो कुछ बोल रहा है न वो कुछ उस तरह से सुन रहे है। बाबा ने भी एक बार ये मेथड की थी, बाबा आए थे हिस्ट्री हॉल में, आए थे कहां आए थे, मेडिटेशन में, और कुछ भी नहीं, मौनम व्याख्यानम, मौन से सबको देखा और चले गए। बाद में बाबा को कहा, बाबा बिल्कुल मजा नहीं आया, कुछ तो बोलो। परंतु वो भी एक स्पीच है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशया। शिष्य कुछ पूछ नहीं रहे, परंतु शिष्यों के मन में जो संशय है, वो मौन की जो वाणी है, वो ही दूर कर रहे उन सभी संशयों को। इतनी पावर उस मौन में है। शास्त्रों में लिखा है 12 साल यदि कोई मौन रहे तो बाद में जो भी बोलेगा वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो फिर से, वाणी से परे की स्थिति प्रिय लगती है या वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है? वाणी में आना बहुत अच्छा है, परंतु वाणी से परे की जो स्थिति है बहुत पावरफुल स्थिति है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम वाणी में आए ही ना, आते हुए भी जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये सेंटर है, ये सेंटर साइलेंस है, स्पीच है, क्या साइलेंस है, और ये जो सर्कल, ये जो परिधि है, ऑर्बिट है, सर्कमफेरेंस, यहां पर कर्म है और यहां पर स्पीच है, ये साइलेंस है। कर्म और वाणी में आते हुए भी उनका केंद्र बिंदु साइलेंस ही हो। ये जो निकल रहा है स्पीच, वो निकले भी तो साइलेंस से, तो ही वो शक्तिशाली होगा। तो ये जो कर्म हो रहा है, कर्म में वाचा है, परंतु वाचा और कर्म परिधि पर है, परंतु उनका केंद्र भी मौन हो, वो मौन का आकर्षण हो, मौन खींचते रहे। जैसे ही ये पूरा हो गया, तुरंत रबर कैसा होता है, उसको खाली जैसे दबा के रखा है, वो स्प्रिंग खोलते ही वो अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ जाए। ओरिजिनल नेचर, ओरिजिनल स्वभाव मौन है आत्मा का। आत्मा को सबसे ज्यादा स्थिति यहां की अच्छी लगती है। वो स्वतः ही मौन यदि हो जाए तो स्वतः ही उसको अच्छा लगने लगता है, शांत लगने लगता है। और जितना ज्यादा स्पीच में रहता है, किसी भी कारण से, कितना भी सात्विक स्पीच हो, वो एक नीचे की अवस्था है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में 3 अवस्थाएं बताई है। एक अवस्था जिसमें वो नाच रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो और उसका मित्र नित्यानंद, गौरंग निताई, वो दोनों नदिया या वहां पर उड़ीसा के उधर झूम रहे गलियों में, सड़कों में, हरे कृष्ण करते करते कृष्ण का गुणगान कर रहे। ये एक अवस्था है जीवन की, जब वो संपूर्ण होश में है तो उसके द्वारा इस तरह का कर्म हो रहा है। फिर जो भी जगही मदही जो भी मिल रहे मार्ग में, उनका उद्धार किए जा रहे, जो भी मिल रहे। एक दूसरी अवस्था है, उसकी थोड़ी सी आगे की अवस्था है। वहां पर वो बोल नहीं रहा है, परंतु विरह अग्नि है अंदर, हे कृष्ण, फिर मौन हो जाता है, फिर याद आती है, इधर जाता है, दौड़ता है, यहां कृष्ण दिखता है, प्रतिमा, उसकी मूर्ति, भाग के जाता है और गिरता है, वहां कोई भी नहीं है, विरह है। जैसे मिलन मनाना है उसको, वो चाहिए, कहां है कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, रो रहा है, आंसू बहा रहा है, विरह अग्नि कि कब वो मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, वो अवस्था है। पहली अवस्था जो थी उसमें बहुत गुणगान कर रहा है कृष्ण का, दूसरी अवस्था में विरह है, और तीसरी एक अवस्था है चुप है, भाव समाधि, कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्या बोले, बोलने को कुछ है ही नहीं, ऐसा डीप स्टेट ऑफ एक्सटेसी, ऐसी डीप स्टेज है एक्सटेसी की कि बोलते बोलते ही बिल्कुल चुप, भाव समाधि जिसको कहते हैं, खो गया है, चुपी हो गया है। ये 3 अवस्थाओं में से बार बार वो गुजरता है, फिर से नीचे आता है, फिर से जब वाणी में आता है तो गुणगान करता है, जो भी करना है प्रवचन, परंतु उसको मुख्य रूप से उसकी जो ऊपर की अवस्था है वो खींचती रहती है, मौन। मौन संजीवनी बूटी है, मौन ब्राह्मणों का ब्रह्मास्त्र है। मौन जीवदान है। मौन सबसे बड़ी औषधि है, मौन सबसे बड़ा रूहानी इंजेक्शन है, क्योंकि जो बातें वाचा से समझ में नहीं आती है, प्रश्न पूछने से समझ में नहीं आते, जैसे ही मौन में चले जाए कोई 3 दिन भी, तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही आ जाते हैं। सेवाओं में बोलो जितना बोलना है, परंतु जैसे ही सेवा पूरी हो जाए वो मौन खींचे अपनी तरफ, एक आकर्षण मौन का जबरदस्त कि कब उसकी गोद में चला जाऊं और चुप हो जाऊं, क्योंकि शब्दों में बहुत जंजाल है, वो है फॉरेस्ट है वर्ड्स का, उससे साइलेंस की तरफ, ये यात्रा है हर आत्मा की, वो साइलेंस खींचे। हमको याद है जब लॉन्ग बैक अलग अलग स्टेजेस में अचानक हम मौन में चले गए थे, जो सबसे पहला मौन था, सिक्स मंथ्स चला था वो इतना गहरा था, इतना गहरा था, ज्ञान में आने से भी बहुत पहले। वो मौन ऐसा था कि जिसमें हमने कुछ भी नहीं बोला था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, खाना खा रहे थे पर बोल नहीं रहे थे, वो उसमें बोलने की क्या जरूरत है, मांगना नहीं, वो माता जी खुद ही लाके रख देती थी। परंतु अजीब सा मौन था वो, परंतु इतना गहरा मौन था कि उसमें ऐसा होता है कि क्या होने वाला है वो दिखाई देने लगता है, पता पड़ने लगता है कि ऐसा हो सकता, ऐसा होगा, या जो जो संकल्प करो वो अभी बारिश होगी दोपहर में, अभी नहीं लग रहा है कुछ, एकदम खुला है, परंतु अचानक संकल्प, ऐसा भी नहीं किसी को दिखाने के लिए, परंतु हो गई। मौन में बहुत जबरदस्त पावर है, क्योंकि वो उसका ओरिजिनल संस्कार है, वहां पे जाते ही बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगती है, आत्मा का कहां से आई है आत्मा, वो गर्भ तक, इस जन्म में गर्भ तक जो कुछ हुआ वो सारा दिखाई देने लगता है, और ज्यादा अगर गहरा हो जाए तो वो गर्भ से भी दरवाजा खुलकर पिछले जन्म में आत्मा कहां थी और वो सारे राज उसको दिखाई देने लगते हैं, क्या थी, कैसी थी, कहां कहां से गुजरकर वो यहां आई है, क्योंकि माइंड क्लियर होता है, उसमें स्पष्ट होता है, सब कुछ निकलने लगता है, जन्म जन्म में जो कुछ अशुद्धियां है उसमें वो इतनी स्पष्ट होने लगती है, यहां पर वो मौन का प्रभाव है। तो नागराज भाई क्या करना चाहिए, बीच बीच में मौन, परंतु मौन की एक परिभाषा एक है, ये भी है, मौन अर्थात स्वचिंतन, मौन अर्थात ज्ञान चिंतन, मौन अर्थात कंट्रोल्ड स्पीच, वो भी जबरदस्ती नहीं हो कहीं पर भी, पर स्वतः हो, कार्य स्पीच के ऊपर करना ही नहीं है एक्चुअली, स्पीच को रोकने का कोई कार्य करे तो बेचैनी हो जाएगी। जैसे बीच में कभी एक बार बहुत पहले ज्ञान सरोवर में वो कौन आए थे, पावर ऑफ कौन आते हैं बाहर के लोग जो आते हैं ना, फ्यूचर वाले नहीं, वो बाहर के लोगों, पावर ऑफ फ्यूचर नहीं, दूसरे लोग आते हैं ना, वो पीस ऑफ माइंड, हाँ वो बाहर के आते हैं ना, उसमें वो तो कोई बीके नहीं होते, तो कभी एक बार बहुत पहले उनको कहा गया था मौन है सबका, ऑब्जर्व साइलेंस, मुश्किल हो गई सबके लिए, अब उनको अभ्यास ही नहीं है, दमन हो गया, वो सेपरेशन हो गया, इशारों से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो वो तो कुछ भी दबाओगे तो निकलेगा तो कहीं ना कहीं से, वो वाला नहीं, विथ अंडरस्टैंडिंग। जैसे एक दिन दिया हुआ है आपको और कहा है कि ये मुरली है, इसके ऊपर सारे दिन भर चिंतन करो, तो सारे दिन भर चिंतन करते करते हम ये थोड़ी ना सोचते हैं मुझे बोलना नहीं है, वो बोलना नहीं इज अ साइड इफेक्ट, वो स्वतः ही आएगा, लक्ष्य वो नहीं है, सो वो इज अ साइड इफेक्ट, वो उसका एक बाहर का है,
उसका
परिणाम है, वो एक मुख्य जो है वो कुछ और है। तो ज्ञान चिंतन को यदि मुख्य बना दिया जाए तो मौन उसका परिणाम के रूप में आएगा। स्वच्छ चिंतन को यदि मुख्य बना दिया जाए तो मौन परिणाम में आएगा। मौन, साइलेंस इज द रिजल्ट रादर देन प्रैक्टिस। डीप कंटेम्पलेशन, डीप जर्निंग, डीप रिफ्लेक्शन, डीप एनालिसिस, ये करते जाओ तो मौन उसका परिणाम के रूप में आएगा। ओम शांति।